एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में या ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञानो गोष्ठी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी पहली मेजबान
और मैं हूं आपका दूसरा मेजबान। आज हम बात करने वाले हैं जेरेड डायमंड की एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर, द वर्ल्ड अंटिल यस्टरडे, मतलब कल तक की दुनिया।
हाँ, और ये किताब ना एक बहुत जरूरी सवाल हमारे सामने रखती है। क्या हमारी ये जो आज की जिंदगी है, भागदौड़ वाली, टेक्नोलॉजी वाली, क्या यही जीने का सबसे अच्छा तरीका है या शायद इकलौता तरीका है?
बिल्कुल। या फिर वो समाज जो हजारों सालों से चले आ रहे हैं, पारंपरिक समाज, क्या उनके पास भी कुछ है जो हम आज सीख सकते हैं?
सही बात है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, बड़े शहरों में रहना, सरकार, कानून, ये सब तो मानव इतिहास में बहुत बहुत नया है।
हाँ, कुछ 100 साल या शायद कुछ 1000 साल, जबकि इंसान लाखों साल से हैं।
तो डायमंड हमें वही याद दिला रहे हैं। तो पहले लेखक के बारे में थोड़ी बात कर लें, जेरेड डायमंड।
हाँ जरूर। ये कोई आम लेखक नहीं है, पुलित्जर प्राइज मिल चुका है इन्हें। और कमाल की बात यह है कि ये एक ही साथ ज्योग्राफर भी हैं, हिस्टोरियन भी, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी, यहाँ तक कि फिजियोलॉजिस्ट भी। UCLA में प्रोफेसर हैं।
अरे वाह, मतलब कई सारे विषय एक ही व्यक्ति में।
हाँ, और यही इनकी खासियत है। ये अलग अलग फील्ड्स को, जैसे बायोलॉजी, इकोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, आर्कियोलॉजी, इन सबको मिलाकर बड़े सवालों के जवाब ढूंढते हैं।
जैसे उनकी वो किताबें थीं गन्स, जर्म्स एंड स्टील और कोलैप्स, वो तो बहुत ही प्रसिद्ध हुई थीं।
बिल्कुल। लेकिन इस किताब को जो चीज और भी खास बनाती है वो है उनका फील्ड वर्क न्यू गिनी में।
हाँ, मैंने भी पढ़ा है, दशकों तक वहां काम किया है उन्होंने।
हाँ, और न्यू गिनी दुनिया की उन गिनी चुनी जगहों में से हैं जहां आज भी पारंपरिक समाज वैसे ही जी रहे हैं जैसे शायद हजारों साल पहले जीते थे। तो डायमंड सिर्फ अकादमिक बातें नहीं कर रहे हैं, उन्होंने वहां रहकर उन लोगों के साथ जीकर उनके जीवन को समझा है।
ये बात तो है, मतलब वो अनुभव उनकी बातों को एक अलग ही वजन देता है ना?
बिल्कुल, एक विश्वसनीयता आती है उससे।
अच्छा, तो अब किताब पर आते हैं, द वर्ल्ड अंटिल यस्टरडे। ये क्या करने की कोशिश कर रही है?
देखिए, ये किताब एक तरह से पुल बनाने की कोशिश है, किसके बीच? हमारे आज के आधुनिक औद्योगिक समाज और उन पारंपरिक छोटे आदिवासी समाजों के बीच।
और डायमंड आधुनिक समाज के लिए वो एक्रोनिम यूज करते हैं, वेयर्ड।
हाँ, वेयर्ड यानी वेस्टर्न, पश्चिमी, एजुकेटेड, शिक्षित, इंडस्ट्रियलाइज्ड, औद्योगिक, रिच, अमीर और डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक।
और वो ये क्यों कहते हैं, उनका पॉइंट क्या है?
उनका पॉइंट ये है कि हम जो वेयर्ड समाजों में रहते हैं, हम ना तो दुनिया की मेजॉरिटी आबादी हैं और ना ही मानव इतिहास के ज्यादातर हिस्से को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारा तरीका अजनबियों से रोज मिलना, सरकार पर निर्भर रहना, न्यूक्लियर फैमिली में रहना, ये सब अगर आप इतिहास देखें तो बहुत नया और अजीब है।
ये तो सोचने वाली बात है। तो किताब कैसे आगे बढ़ती है, कोई कहानी है?
नहीं, कहानी की तरह नहीं, ये थीम बेस्ड है। डायमंड अलग अलग पहलू लेते हैं जीवन के, जैसे दोस्ती, न्याय, लड़ाई, बच्चों की परवरिश, बुजुर्गों की देखभाल, सेहत, खाना पीना, धर्म, भाषा, और फिर वो तुलना करते हैं कि इन मामलों में पारंपरिक समाज कैसे काम करते थे और हम आज कैसे करते हैं।
और न्यू गिनी के उदाहरण बार बार आते होंगे।
हाँ बिल्कुल, उनके अपने अनुभव और दूसरे पारंपरिक समाजों के अध्ययन, ये सब साथ में चलते हैं।
लेकिन मकसद क्या है? क्या वो ये कह रहे हैं कि हमें वापस वैसे ही जीना चाहिए?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अतीत का महिमा मंडन करना या नॉस्टैल्जिया में खो जाना मकसद नहीं है। डायमंड बहुत प्रैक्टिकल हैं। वो बस ये पूछ रहे हैं कि क्या उन पुराने तरीकों में कुछ ऐसा है, कोई ऐसा ज्ञान, कोई ऐसा लचीलापन जिसे हम आज अपनाकर अपनी जिंदगी बेहतर बना सकते हैं।
मतलब अतीत से सीखना पीछे लौटे बिना।
एग्जैक्टली। तो चलिए अब कुछ मुख्य थीम्स में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। शुरू करें दोस्ती, दुश्मनी और अजनबियों से, पारंपरिक समाजों में कैसे काम करता था।
हाँ, ये दिलचस्प है। वहां दुनिया काफी साफ बंटी होती थी, है ना? आपका परिवार, आपका कबीला, आपकी जनजाति, ये सब आपके अपने लोग थे।
हाँ, मतलब दोस्त। फिर पड़ोसी जनजातियां होती थीं जो संभावित दुश्मन हो सकती थीं, और फिर जो बहुत दूर रहते थे वो तो बिल्कुल ही अजनबी थे।
आज के शहर की जिंदगी से कितना अलग है, जहां हम रोज शायद सैकड़ों अजनबियों को देखते हैं जिनके बारे में कुछ नहीं जानते।
बिल्कुल, पारंपरिक समाज में हर मुलाकात का एक कॉन्टेक्स्ट होता था, एक हिस्ट्री, कोई पूरी तरह न्यूट्रल नहीं होता था।
अच्छा, तो छोटे समुदाय में रहने के फायदे भी थे, जैसे सपोर्ट सिस्टम बहुत मजबूत होता होगा।
हाँ बिल्कुल, मुश्किल में सब साथ खड़े होते थे, लेकिन नुकसान भी थे, प्राइवेसी जैसी कोई चीज नहीं होती थी और सोशल प्रेशर यानी सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा होता था।
हाँ ये तो है, इसी से जुड़ा डायमंड का वो कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टिव पैरानोया। ये सुनने में थोड़ा अजीब है।
हाँ, कंस्ट्रक्टिव पैरानोया यानी रचनात्मक संदेहवाद। इसका मतलब है एक तरह की लगातार लो लेवल की सतर्कता।
मतलब
सोचिए ऐसी दुनिया जहां न पुलिस है न लिखे हुए कानून, कोई अजनबी आता है तो वो दोस्त है या दुश्मन पता नहीं, तो आपको हमेशा थोड़ा चौकन्ना रहना पड़ता था। ये कोई इरेशनल डर नहीं था, ये सर्वाइवल के लिए जरूरी था।
अच्छा, जैसे कि ये रास्ता सेफ है, ये मशरूम खा सकते हैं या नहीं, इस अजनबी पर भरोसा करें, इस तरह की चीजें।
हाँ बिल्कुल, एक जरूरी अडेप्टेशन था वो उस माहौल के लिए।
समझ आता है। अच्छा, अब शांति और युद्ध पर आते हैं। यहाँ न्याय का सिस्टम कैसे अलग था? आपने कहा था प्रतिशोधात्मक बनाम सुधारात्मक न्याय।
हाँ देखिए, हमारे मॉडर्न सिस्टम में होता है रेट्रीब्यूटिव जस्टिस, प्रतिशोधात्मक न्याय। मतलब राज्य अपराध तय करता है और सजा देता है, अक्सर जेल भेजकर।
ठीक है,
लेकिन पारंपरिक समाजों में जोर ज्यादातर रेस्टोरेटिव जस्टिस पर होता था।
रेस्टोरेटिव यानी रिस्टोर करना, सुधारना।
लक्ष्य सजा नहीं था।
हाँ,
मुख्य लक्ष्य सजा देना नहीं बल्कि रिश्तों को सुधारना था, पीड़ित पक्ष को मुआवजा दिलवाना, दोनों पक्षों में सुलह करवाना ताकि समाज में शांति बनी रहे और लोग आगे भी साथ रह सकें या कम से कम आसपास रह सकें।
ये तो बहुत अलग सोच है हमारे आज के सिस्टम से। प्रोसेस भी अलग होता होगा।
हाँ, प्रोसेस ज्यादा पर्सनल, ज्यादा इमोशनल होता था। फोकस सुलह पर होता था, समाज को जोड़ना लक्ष्य था, तोड़ना नहीं।
लेकिन फिर युद्ध के बारे में डायमंड क्या कहते हैं? क्या वो मानते हैं कि परंपरागत समाज ज्यादा शांत थे?
यही पर वो एक चौंकाने वाली, थोड़ी अनकंफर्टेबल बात कहते हैं।
ये सच है कि मॉडर्न स्टेट वॉर जैसे वर्ल्ड वॉर भयानक विनाशकारी हो सकते हैं, लाखों लोग मरते हैं।
हाँ,
लेकिन डायमंड आंकड़ों से दिखाते हैं कि कई परंपरागत समाजों में किसी एक व्यक्ति के लिए हिंसक मौत मरने का पर्सनल रिस्क आज के राज्यों की तुलना में कहीं ज्यादा था।
सच में? कैसे?
क्योंकि वहां लगातार छोटे छोटे झगड़े, रेड्स, घात लगाकर हमले, बदले की भावना, ये सब चलता रहता था। स्टेट के पास हिंसा पर मोनोपोली नहीं थी, तो ओवरऑल वायलेंस का लेवल प्रति व्यक्ति अक्सर ज्यादा था।
तो वो जो एक इमेज होती है पीसफुल सेवेज की, शांति प्रिय जंगली की,
वो गलत है।
डायमंड के हिसाब से हाँ, वो काफी हद तक एक रोमांटिक कल्पना है। राज्य अपनी सारी कमियों के बावजूद अंदरूनी हिंसा को कंट्रोल करने में ज्यादा सफल रहा है।
ये तो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। बच्चों की परवरिश और बुजुर्गों की देखभाल, यहाँ क्या अलग था?
बच्चों के मामले में तो पारंपरिक तरीके हमारे वेस्टर्न तरीकों से बहुत अलग और शायद ज्यादा उदार थे।
कैसे?
जैसे बच्चे लगभग हर समय किसी न किसी के शारीरिक संपर्क में रहते थे,
गोद में या पीठ पर बंधे हुए।
रोने पर फौरन ध्यान दिया जाता था, भूख लगने पर फौरन दूध पिलाया जाता था, डिमांड फीडिंग जैसे कहते हैं।
और इसमें सिर्फ माँ बाप ही नहीं होते थे शामिल?
नहीं, यही खास बात है। डायमंड एलो पेरेंट्स की बात करते हैं।
एलो पेरेंट्स
मतलब?
मतलब समुदाय के दूसरे लोग, दादा दादी, चाचा चाची, बड़े भाई बहन, पड़ोसी, सब मिलकर बच्चों की देखभाल करते थे। इसे कम्युनिटी चाइल्ड रियरिंग कह सकते हैं।
अच्छा, इससे तो माँ बाप पर बोझ भी कम होता होगा।
बिल्कुल, और बच्चे का सोशल सर्कल भी शुरू से ही बड़ा होता था।
फिजिकल पनिशमेंट कम होती थी और बच्चों को एक्सप्लोर करने की, सीखने की आजादी ज्यादा दी जाती थी।
ये आज के हमारे न्यूक्लियर परिवारों और बच्चों पर 2400 घंटे नजर रखने वाले माहौल से तो बिल्कुल उल्टा है।
हाँ, और बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार होता था इसमें तस्वीर थोड़ी मिक्स्ड है, ज्यादा प्रैक्टिकल है।
मतलब हमेशा सम्मान नहीं मिलता था।
देखिए, कुछ समाजों में ज्ञान और अनुभव के लिए बहुत इज्जत थी, लेकिन कई जगहों पर, खासकर जहां खाने पीने की कमी थी, जैसे नोमैडिक ग्रुप्स में, अगर कोई बुजुर्ग फिजिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता था तो उसे निग्लेक्ट भी किया जा सकता था या मुश्किल हालात में पीछे भी छोड़ा जा सकता था।
अरे, ये तो काफी कठोर लगता है सुनने में।
हाँ, आज के हिसाब से कठोर है। उनका मूल्य अक्सर उनकी यूटिलिटी, उनकी उपयोगिता से जुड़ा होता था। यह हमारी आज की पेंशन और नर्सिंग होम वाली दुनिया से बहुत अलग नजरिया था, ज्यादा यथार्थवादी शायद।
ठीक है, अब आते हैं खतरों और उनसे निपटने के तरीकों पर। वो कंस्ट्रक्टिव पैरानोया वाली बात फिर से आती है यहाँ।
हाँ, सोचिए ना पुलिस, ना अस्पताल, ना प्रोडक्ट्स पर वार्निंग लेबल्स, खतरे हर तरफ थे। जहरीले पौधे, जानवर, कमजोर पेड़ की डाल, अजनबी,
तो हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ता था।
बिल्कुल, और डायमंड यहाँ एक बहुत दिलचस्प तुलना करते हैं। हम जो मॉडर्न लोग हैं, हम अक्सर उन खतरों से ज्यादा डरते हैं जो बहुत रेयर हैं पर मीडिया में बहुत दिखते हैं, जैसे प्लेन क्रैश, टेररिस्ट अटैक।
हाँ, ये तो है।
जबकि हम उन रोजमर्रा के खतरों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं जो कहीं ज्यादा रियल हैं, जैसे खराब डाइट, एक्सरसाइज की कमी या गाड़ी चलाते हुए फोन यूज करना।
ये बात तो बिल्कुल सोला आने सच है। पारंपरिक लोग शायद अपने असली खतरों को हमसे बेहतर समझते थे, और यही बात खाने पीने और सेहत पर भी आती है ना?
हाँ बिल्कुल। डायमंड बताते हैं कि नमक, चीनी, फैट, इनके लिए जो हमारी क्रेविंग है, जो तीव्र इच्छा होती है, वो एवोल्यूशनरी है।
मतलब
कल तक की दुनिया में ये चीजें कम मिलती थी और एनर्जी के लिए जरूरी थी, तो इनको पसंद करना हमारे सर्वाइवल के लिए अच्छा था।
लेकिन आज जब सुपरमार्केट में ये सब भरा पड़ा है,
आज ही क्रेविंग हमारे लिए मुसीबत बन गई है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, ये सब NCDs यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, इन्हें सभ्यता के रोग भी कहते हैं।
और सबसे खास बात क्या है इसमें?
खास बात यह है कि जो परंपरागत समाज आज भी अपने पुरखों जैसा खाना खाते हैं, उनमें ये बीमारियां लगभग हैं ही नहीं, जीरो के बराबर।
सच में?
हाँ, इसे डायमंड कहते हैं मिसमैच हाइपोथेसिस, मतलब हमारी बायोलॉजी जो पुरानी दुनिया के हिसाब से बनी है और हमारा आज का माहौल जिसमें चीजें जरूरत से ज्यादा हैं, इनके बीच एक मिसमैच है, तालमेल की कमी है।
वाह, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमारी पूरी मॉडर्न लाइफस्टाइल पर सवाल उठाता है ये। अच्छा, अब जल्दी से धर्म और भाषा की भूमिका पर भी बात कर लेते हैं।
परंपरागत समाजों में धर्म सिर्फ पूजा पाठ नहीं था, उसके कई और काम भी थे। जैसे जो चीजें समझ नहीं आती थीं, बीमारी क्यों हुई, बिजली क्यों गिरी, उनको समझाना।
अच्छा।
मुश्किल समय में जैसे किसी की मौत पर सहारा देना, समाज को जोड़ने वाले रीति रिवाज बनाना, नैतिक नियम बनाना और उन्हें सही ठहराना, ये सब धर्म करता था।
और भाषा?
भाषा के मामले में कई पारंपरिक समाजों में, जैसे न्यू गिनी में, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी एक से ज्यादा भाषाएं बोलना बहुत आम था। लोग पड़ोसी कबीलों की भाषाएं सीख लेते थे, व्यापार के लिए, शादी ब्याह के लिए, डिप्लोमेसी के लिए।
इसके तो दिमागी फायदे भी होते हैं ना?
हाँ बिल्कुल, जबकि हम बड़े मॉडर्न देशों में अक्सर एक ही भाषा तक सिमट रहते हैं।
तो कुल मिलाकर पूरी किताब का निचोड़ क्या है, डायमंड का मेन मैसेज?
मेन मैसेज वही है, सिलेक्टिव एडॉप्शन यानी समझदारी से चुनकर अपनाना, अतीत से सीखो लेकिन आंख बंद करके नहीं।
हाँ, और इसी से कुछ बड़े विचार या संदेश निकल कर आते हैं जिन पर हमने बात भी की। पहला तो यही सिलेक्टिव एडॉप्शन का सिद्धांत, ना तो अतीत को पूजो ना उसे पूरी तरह खारिज करो। मॉडर्न लाइफ के फायदे रखो लेकिन पारंपरिक ज्ञान को भी अपनाओ।
बिल्कुल। दूसरा, वो सुधारात्मक न्याय वाला आइडिया, क्या झगड़ों को सुलझाने का मकसद सिर्फ सजा देना होना चाहिए या रिश्तों को ठीक करना और शांति बहाल करना ज्यादा जरूरी है? ये हमारे अपने समाज के लिए भी सोचने वाली बात है।
हाँ, हमारी पंचायतों वगैरह में कुछ ऐसा होता भी था शायद। तीसरा, कंस्ट्रक्टिव पैरानोया, मतलब रिस्क को सही तरह से समझना, असली खतरों पर ध्यान देना, ना कि सिर्फ उन पर जो मीडिया दिखाता है। अपनी सेहत, अपनी सुरक्षा, ये असली रिस्क है।
चौथा, कम्युनिटी का महत्व। पारंपरिक समाजों का वो मजबूत सोशल फैब्रिक, खासकर बच्चों की देखभाल में वो एलो पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट, ये आज के अकेलेपन का, मेंटल हेल्थ इश्यूज का एक जवाब हो सकता है। क्या हम अपने आस पड़ोस से, अपने समुदाय से फिर से जुड़ सकते हैं?
पांचवां, बच्चों की परवरिश, वो लगातार फिजिकल कॉन्टैक्ट, जरूरत पर तुरंत रिस्पॉन्स, कम्युनिटी केयर, क्या ये तरीके बच्चों के लिए ज्यादा नेचुरल नहीं है? शायद आज के पेरेंट्स का स्ट्रेस भी कम हो इससे।
और छठा, वो मिसमैच हाइपोथेसिस, ये बार बार याद दिलाता है कि हमारी लाइफस्टाइल का हमारी हेल्थ पर कितना सीधा असर है। वो NCDs, वो सभ्यता के रोग, वो हमारे अपने जीने के तरीके का नतीजा है। सिंपल, ताजा खाना, थोड़ी मेहनत, शायद यही जवाब है।
किताब में ऐसी कई बातें हैं जो याद रह जाती हैं, जैसे डायमंड का कहना कि अतीत एक दूसरे देश जैसा है, पर हम सब वहीं से आए हैं। हम वापस नहीं जा सकते पर वहां से अच्छी चीजें चुन तो सकते हैं।
हाँ, या वो न्याय वाली बात कि लक्ष्य सजा नहीं, सुलह था, ताकि लोग साथ रह सकें। यह हमारे पूरे लीगल सिस्टम के उद्देश्य पर ही सवाल खड़ा करता है।
बिल्कुल। और सेहत वाली बात तो है ही कि जो बीमारियां हमें आज घेर रही हैं, वो पारंपरिक जीवन शैली में थी ही नहीं, ये हमारी अपनी देन है।
सही बात है, ये सब हमें अपनी रोजमर्रा के चॉइसेस के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों को हम अपनी लाइफ में लाएं कैसे, कुछ प्रैक्टिकल तरीके।
हाँ, जैसे बच्चों की परवरिश में, शायद हम उन्हें थोड़ा और फिजिकल टच दे सकते हैं, उनकी ज़रूरतों पर थोड़ा और जल्दी ध्यान दे सकते हैं और देखभाल में मदद के लिए अपना गांव बना सकते हैं, दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी।
सेहत के लिए तो साफ है, प्रोसेस्ड फूड कम, नमक चीनी कम, घर का बना ताज़ा खाना ज़्यादा और थोड़ा हिलना डुलना, मतलब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, टहलना ही सही।
सामाजिक जीवन में शायद अपने पड़ोसियों को हेलो बोलना शुरू कर सकते हैं, कम्युनिटी के किसी काम में थोड़ा हिस्सा ले सकते हैं, और अगर किसी से झगड़ा हो तो सिर्फ ब्लेम गेम खेलने के बजाय ये सोचें कि रिश्ता कैसे ठीक हो।
हाँ, और रिस्क मैनेजमेंट में असली खतरों को पहचानना, जैसे गाड़ी चलाते हुए फोन यूज करने का खतरा या बैठे रहने वाली जिंदगी का खतरा, ये शायद किसी बहुत दूर की घटना से ज्यादा रियल है हमारे लिए। और हाँ, घर के बड़ों से बात करना, उनके अनुभव सुनना।
बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बड़ा फर्क ला सकती हैं। ये सब डायमंड की किताब से मिले इशारे हैं।
मेरे लिए तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे चौंकाने मिली बात निकली, वो पारंपरिक समाजों में हिंसा का ज्यादा पर्सनल रिस्क होना था। ये उस शांतिपूर्ण अतीत वाली इमेज को तोड़ती है, पर साथ ही उनका न्याय का और कम्युनिटी का तरीका बहुत सीखने लायक लगा।
और मेरे लिए सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि हमारा मॉडर्न तरीका ही जीने का एकमात्र या जरूरी नहीं कि बेस्ट तरीका हो। अतीत के पास बहुत सारे जवाब हैं, खासकर सोशल कनेक्शन और हेल्थ के मामलों में, जिन्हें हमने शायद भुला दिया है। वो सेलेक्टिव अडॉप्शन वाली बात, वो बहुत जरूरी है।
तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जाते जाते, आपको क्या लगता है पारंपरिक समाजों की कौन सी एक आदत या प्रथा है जिसे अगर हम आज अपने समाज में अपनाएं तो सबसे ज्यादा फायदा हो सकता है? सोचिएगा जरूर।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।